वह एक गुणवाचक शब्द है। जिन शब्द भी जातिवाचक होकर न होकर एक गुणवाचक शब्द जिन शब्द ही जब जातिवाचक नहीं है तो जैन शब्द भी जातिवाचक नहीं हो सकता। यह सिद्ध ही है। इसलिए जैन होना जाति से संबंध नहीं रखता। बल्कि पुरुषार्थ से संबंध रखता है। कैसा पुरुषार्थ? धर्म का पुरुषार्थ। धर्म क्या है? जीतना धर्म है। क्या जीतना? इंद्रिय, कषाय, राग द्वेष कर्म आदि को जीतना, यह धर्म पुरुषार्थ है। ऐसे धर्म पुरुषार्थ को जो करने की आस्था रखता है वह श्रावक है, श्रावक जैन। और जो जीत रहा है वह मुनि है, और जो जीत चुका है वह जिन कहलाता है। सिद्ध भगवान अज्ञान को, कषाय को, राग द्वेषादि भावों को जीत चुके हैं, जीत कर जिन बनकर सिद्ध बने। सिद्ध भगवान को जिन नहीं कहेंगे, जिनेंद्र नहीं कहेंगे, जिन और जिनेंद्र एक ही बात है, लेकिन सिद्ध अलग बात है। सिद्ध जिनेंद्र नहीं कहला, मैं जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहा हूं, इसका अर्थ आप अरिहंत भगवान की भक्ति कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं। आप कहते हैं जो जिनेंद्र बनकर सिद्ध हुए हैं मैं उनकी भी भक्ति करूंगा, मैं जिनेंद्र की भक्ति कर रहा हूं कहने से अरिहंत की भक्ति कहलाती है, होती है, और सिद्धों की भक्ति कर रहा हूं कहने से जिनेंद्र की भक्ति नहीं होती। तो जिन का अर्थ होता है जब तक वह जीत नहीं चुका था तब तक तो जैन था, जैन मुनि था, जिसको साधु भी कह सकते हैं, उपाध्याय भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं, मुनि भी कह सकते हैं, श्रमण भी कह सकते हैं। पांच परमिष्टियों में से तीन परमिष्टि जैन, दिगंबर, मुनि हैं। ये जीतने में लगे हैं। सबसे पहला जीतना होता है इंद्रियों को, साथ साथ कषायों को भी। जो इंद्रियों को जीतता है वही कषायों को जीत सकता है, या यूं कह सकते हैं जो कषायों को जीत सकता है वही इंद्रियों को जीत सकता है। कषायों को जीतने वाला ही अपरिग्रही बनता है, कषायों को जीतने के बाद ही हम अंतरंग से खाली होते, अंतरंग परिग्रह से। अंतरंग परिग्रह 14 हैं, ये सब कषाय रूप हैं। उसमें 4 तो कषाय हैं और 9 प्रकार के 9 कषाय हैं, ये 13 हो गए। 4 कषाय और 9 कषाय, ये 13 हो गए। और एक मिलाना है, किसको मिलाओगे? मिथ्यात्व। इस प्रकार 14 अंतरंग परिग्रह हो गए। कषाय पर और मिथ्यात्व पर जिसने काबू पाया, इस पर विजय प्राप्त किया, वह तो हो गया वीतरागी। कषाय न होने से, राग न होने से उनको क्या कहते हैं? वीतरागी। वीतरागी दिगंबर मुनि, यानी अभ्यंतर कषायों को जो जीत चुका है, 14 परिग्रहों को त्याग दिया है, वो दिगंबर जैन मुनि, यही नाम पड़ेगा ना, दिगंबर जैन मुनि। अब कषायों को जीत लिया तो फिर कषायों को जीतने के बाद भी बहिरंग चेतना चेतन जो परिग्रह हैं उनकी आवश्यकता होगी क्या? कषायों को जीतने के उपरांत भी चेतन अचेतन वस्तुओं को संग्रह करना, रखना, पालन करना ये आवश्यक होगा क्या? नहीं। अंतरंग कषायों को जीतने के उद्देश्य से ही वह चेतना चेतन बहिरंग परिग्रहों को छोड़ता है। दिगंबर दीक्षा देते समय गुरु क्या छुड़ाते हैं? कौन सा परिग्रह छुड़ाते हैं? बहिरंग को तो छुड़ाते हैं। तुम वस्त्र उतारो, सब कुछ छोड़ के आए थे आत्म कल्याण के लिए, वस्त्र उतारो, ये कहते हैं। गुरु साक्षी पूर्वक तो हम केवल वस्त्र ही उतारते हैं। गुरु के समक्ष हम केवल वस्त्र उतारने आते हैं, उतार करके उनसे हम दीक्षित होते हैं। परंतु वस्त्र उतारने वाला किस उद्देश्य आता है गुरु के पास? आत्म कल्याण के लिए। आत्म कल्याण का अर्थ क्या? कषाय को छोड़ने में आत्म कल्याण है, कषाय को छोड़ना आत्म कल्याण है। तो वह गुरु के पास कषाय को छोड़ने के उद्देश्य से आया है और गुरु समझा रहे हैं आत्म कल्याण के लिए आए हो तो कषाय तो यहां पर छोड़नी पड़ती है, कषाय को छोड़ने के उद्देश्य से ही आना पड़ता है। कषाय को छोड़ने के उद्देश्य से आए हो तो कषाय तो तभी छूट सकते हैं जब तुम्हारे सारे बहिरंग परिग्रह छूट जाएं। कहते हैं मैं तो बाहर का छुड़ा सकता हूं और भीतर का तुम छोड़ रहे हो पर नहीं छोड़ रहे हो, मैं गारंटी कैसे लूं? बाहर का तो दिखता है, वस्त्र छोड़ रहा है और दिगंबर बन रहा है, पर अंतरंग की कषाय को छोड़ करके वस्त्र छोड़ रहा है, ये अंदाजा गुरु कैसे लगाए? उनके वश की बात है क्या? नहीं, वस्त्र छोड़ रहा हूं महाराज, मैं वस्त्र छोड़ना चाहता हूं, वस्त्र छोड़ रहा हूं। किस उद्देश्य से छोड़ रहे हो? उद्देश्य उन्हीं को मालूम रहता है। बाहर से भले ही हम कहे गुरु से कि महाराज हम आत्मकल्याण चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं, कि जिसको छोड़ रहा हूं अगले भाव में ये डबल मिले इसलिए छोड़ रहा हूं, ऐसा उद्देश्य भी दीक्षार्थी का अकस्मात हो सकता है कि नहीं? 100% तो नहीं, लाखों में एक आध। और लाखों में एकाध क्या कह रहे हैं, आज तो जो दीक्षा हो जाती है वहां पर तो केवल साप ही होता है, सारे विचार सारे ध्येय कुछ भी वहां ज्ञान नहीं रहता। दीक्षा का तात्पर्य इतना ही समझते हैं कि वस्त्र छोड़ना दिगंबर दीक्षा है। वस्त्र क्यों छोड़ा जाता है उसका कोई उद्देश्य नहीं, भूल गए। घर क्यों छोड़ा जाता है सब भूल गए। और वस्त्र त्यागने के उपरांत जिसको त्यागा है उसी के चक्कर में और आ जाते हैं। वस्त्र त्याग दिया और संसार के कार्यों में और उलझ गए। आरंभ सारंभ आदि कार्यों में, हिंसा के कार्यों में और धन इकट्ठा करने के कार्य में उलझ गए। तो ये दुनिया की अपेक्षा हो गई, संसार की ही अपेक्षा हो गई, संसार कार्यों के प्रति आसक्ति हो गई। इस आसक्ति के द्वारा क्या उस शिष्य का कल्याण होगा? शिष्य का क्या अर्थ होता है? शिष्य जो शासित है वह शिष्य होता है, जो शासित है जिनके ऊपर शासन चल सकता है, जो शास्य है वो शिष्य है, जो शासन के योग्य हो वह शिष्य है। किसका शासन प्रश्न उठता है? गुरु का?
जैन शासन।
जीतने का शासन, जीतने के जितने भी संविधान हैं, सूत्र हैं, उन सूत्रों के अनुसार चलने के प्रति समर्पण भाव, ये जिसमें हो उसमें शिष्यत्व की योग्यता होती है, पात्रता होती है। और वह जीतने के लक्ष्य से आया गुरु के पास और गुरु चरणों में समर्पित होकर के अपने कषायों को त्याग दिया तो शासित हो गया, संविधान में बैठ गया, सूत्र के आधार से वह अपने आत्मकल्याण करने लगा। और जब आत्मकल्याण करने लगा, कषाय त्याग दिया, तब वह शासित हो गया, ये कहा जाता है। जब शासित हो जाता है गुरु के माध्यम से, कषायों को त्याग कर गुरु से शासित होता है तब वह शिष्य बनता है और यह गुरु और शिष्य की परंपरा अनादि है। गुरु और शिष्य इन दोनों में पहली उत्पत्ति किसकी है ये कहना भी मुश्किल है।
धारण की बेहतर है।
पहले गुरु का जन्म हुआ क्या शिष्य का जन्म हुआ ये कहना बहुत ही मुश्किल है। या एक साथ हो गया। पिता और पुत्र इसमें से पहला किसका जन्म हुआ ये कहना बहुत मुश्किल है। माँ और पुत्र बेटा इसमें किसका पहला जन्म हुआ ये कहना मुश्किल है। महाराज जैसे कैसे माँ तो पहले ही होती है पुत्र बाद में आता है। पिता पहला होता है पुत्र बाद में आता है कैसे कह सकते हो। नहीं ऐसा कह ही नहीं सकते कि पिता पहला था बाद में पुत्र का जन्म हुआ है। ठीक है तो जन्म किसका पहला
व्यवहार से पिता का
तो व्यवहार से पुत्र का क्यों नहीं। अपने कर्म से आता है कर्म से तो आता है आए बिना तो आप बन नहीं सकते। आपको पिता किसने बनाया। पहले थे क्या पिता कब से कहलाने लगे आप। जब वो आया तो आपको पिता किसने बनाया तो आपके पुत्र ने ही पिता बनाया और पुत्र आए बिना पिता कैसे बन सकते। पहला कौन आया। पहला तो पुत्र ही आया। पुत्र आए बिना कोई पिता नहीं हो सकता। पुत्र नहीं आता तो आप भी किसी न किसी के पुत्र ही होते पिता नहीं रहते। जब तक पुत्र नहीं आता तब तक कोई पिता नहीं बनता। ठीक उसी तरह से जब तक किसी शिष्य को शिष्य नहीं मिलता वह शिष्य गुरु नहीं बनता। रहस्य तो है बारीक बारीक रहस्य नहीं है कल्पना में नहीं आते विचार में नहीं आ पाते जल्दी। ये हमारे गुरु शिष्य हो तो ना गुरु किसको कहे। एक शिष्य को जब तक कोई दूसरा शिष्य ना हो जाए तब तक वह किसी का गुरु नहीं है वो तब तक शिष्य ही है। और वे गुरु जब तक किसी एक व्यक्ति को शिष्यत्व स्वीकार न करे तब तक वो गुरु नहीं वो शिष्य ही किसी न किसी दूसरे के तब तक शिष्य ही हैं। अब ये शिष्य हैं पहले क्या थे ये शिष्य ही तो थे गुरु थे क्या। गुरु बनने की योग्यता थी गुरु बनने की पात्रता थी इतना कह सकते हैं, लेकिन गुरु थे क्या? आप में पिता बनने की पात्रता थी, योग्यता थी, ये कह सकते हैं। पिता थे क्या? पिता कब बने? पुत्र आने के बाद। पुत्र कब आया? बिल्कुल बारीक प्रश्न है ये, हंसने की क्या बात है, बारीक बारीक प्रश्न है ये। पुत्र कब आया?
पिता बनने के बाद पुत्र आया।
नौ माह के बाद आया क्या? ये पूछ रहा हूँ। नौ महीने के बाद आया क्या? तो कब आया?
वो पिता होने के बाद। वो पिता होने के बाद पुत्र आया।
ऐसे कैसे हो सकता है? शादी होने के बाद भी ये दोनों न पिता पुत्र, पिता है न माँ है। तीसरा जब तक बीच में नहीं आता तब तक वो माँ नहीं और ये पिता नहीं। यदि शादी होने मात्र से माता पिता कहलाए किसी के, तो फिर पुत्र को आने की जरूरत ही क्या है? रहो तुम माता पिता। ऐसा भी नहीं होता। शादी होने के बाद भी वो दोनों किसी न किसी का पुत्र रहते हैं और ये किसी न किसी का पुत्री होती है। तुम दोनों के बीच में किसी का अवतार हो जाए तब कहीं जाकर के आप पिता और माता कहलाएंगे। अवतार होने के बाद, क्या अवतार होने से पहले? अवतार होने के बाद ही माता पिता कहलाएंगे, नौ माह के बाद नहीं। नौ माह पहले जिस दिन अवतरण हुआ उसी दिन। पर ये हम पता नहीं लगा सकते किस दिन हम पिता बने थे, किस समय पिता बने थे, कितना बजकर कितना मिनट कितना सेकंड हुआ था। महाराज पता लगा सकते हैं, आजकल मशीन आए, सोनोग्राफी आया है, ऐसा आप कह सकते हैं। सोनोग्राफी में भी करेक्ट टाइम नहीं मिल सकता आपको, जजमेंट नहीं मिल सकता। जीव जिस दिन आया था, जिस मिनट पर, जिस सेकंड पर आया था, वह समय पता लगाना किसी के हाथ की बात नहीं, किसी के मशीन की बात नहीं, यहां कुछ नहीं चल सकता। आपको पता ही नहीं कब पिता बने और कब मां बने। ऐसा वह अदृश्य समय होता है। अब मशीन से आप निर्णय लेते हैं तो नौ माह पहले ही पता चल सकता है, लेकिन अगर मशीन का सहारा नहीं लेते तो क्या पता नहीं लगता नौ माह से पहले? तब भी पता लगता है। नौ माह के बाद पुत्र का जन्म होने के पश्चात ही ये पिता बने, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं, नौ माह से पहले ही हम घोषित हो जाते हैं पिता और मां हैं। इसे गुरु शिष्य का संबंध है। गुरु और शिष्य, यहां पर अनादिकालीन संबंध है और ये संबंध जब तक रहेगा तब तक इस धरती पर धर्म रहेगा। दोनों का संबंध जिस दिन विच्छेद को प्राप्त होगा उस दिन धर्म भी समाप्त होगा। दोनों का जन्म एक दिन ही होता, एक ही दिन, पर यहां पर नौ माह नहीं लगते, यहां अदृश्यता का कोई काम नहीं, यहां वो दृश्य है। कोई व्यक्ति ढूंढता 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 चला गया, मुझे एक गुरु को ढूंढना है और गुरु बनाना है, मेरे जीवन में मुझे एक गुरु चाहिए। क्यों चाहिए आपको गुरु? ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्यों चाहिए? आत्मकल्याण के लिए चाहिए। आत्मकल्याण किसमें है? कषाय छोड़ने में। आत्मकल्याण कषाय छोड़ने पर प्रारंभ होता है, वीतराग बढ़ने में है, आत्मकल्याण करने में है, कषाय छोड़ने में। कषाय छोड़े बिना क्या हम वीतराग बन सकते हैं? वीतराग शब्द ही बता रहा है, वीत राग, बीत गया है राग, बीत गया है पूरी कषाय जिसकी नष्ट हो गई है, वह वीतराग। बीत गई है कषाय पूरी राग कषाय, वह वीतराग। वीत बीत एक ही बात है, बीत गया है। वी विशेष रूपेण हितः गतः अतीतः इति वीतः, वीतः गत रागः। राग संपूर्ण रूप से जिसका निकल चुका है, जा चुका है, अंतरंग परिग्रह समाप्त हो चुका है, उनको हम वीत राग कहते हैं। और अंतरंग परिग्रह समाप्त उस दिन होता है जिस दिन हम आत्म कल्याण की भावना भाते हुए छोड़ने को तैयार होते, त्यागने को तैयार होते। मुझे अंतरंग से भी खाली होना है और बहिरंग से भी खाली होना है। खाली होने में ही कल्याण है, खाली न होना ये संसार है, दुख है, यातना है। खाली हो जाना यह कल्याण है, हित है, सुख है, शांति है। जैन धर्म को विश्व धर्म कहा, किन अर्थों में कहा? विश्व धर्म इसलिए कहा, विश्व का अर्थ होता है दो वस्तुओं का मेल, चेतन और अचेतन वस्तुओं का मेल, यह विश्व कहलाता है। आपको आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे रहा है अचेतन है, आंखों से दिखता है वह सब अचेतन, पुद्गल। पुद्गल का यह विस्तार है। और इसके पश्चात हमें दिखता है चेतन। चेतन तभी दिखता है जब वह शरीरधारी हो, लेकिन केवल एक चेतन को आप नहीं देख सकते। चेतन अचेतन के संपर्क में आया है, शरीर धारण किया है, तो चेतन भी दिखता है। शरीर के माध्यम से अनुमान लगाते हैं कि इसमें भी चेतन है। व्यक्ति हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, तो क्या आप मुर्दा कहोगे? नहीं, आत्मा है, जीव है, इसको मारो मत, पाप लगेगा, दुख होता है उसको भी, जैसे मुझे मारने से दुख होता है वैसे उसको भी मारोगे तो दुख होता है। मारो मत इन कीटाणुओं को, ये चींटी है, ये वनस्पति है, ये अग्नि है, ये वायु का एक जीव है, मारो मत। इसका ज्ञान शरीर के माध्यम से होता है, चेतन का ज्ञान शरीर के माध्यम से होता है। शरीर में जब तक चेतन रहता है तब तक हिलता डुलता रहता है, हलन चलन होता है। वह हरा भरा रहता है, हलन चलन हो, हरा भरा हो, जिसकी जिंदगी हो, जीवन हो, जीवन को देखकर उसको जीव समझते हैं, लेकिन ये सब अंदाजा शरीर को देखकर ही तो होता है ना। सब अंदाजा शरीर को देखकर ही तो करते हैं। अब यदि उस शरीर में से आत्मा निकल गई तो चेतन दिखता है क्या? देख लो, जा रहा है, जा रहा है दूसरी गति में। कब निकल गया और कैसे, किस दिशा से निकल गया, कुछ समझ में नहीं आता। पर जब तक वो चेतन इस शरीर में था तब शरीर ऐसा ऐसा होता था, चलता था, फिरता था, बोलता था, बैठता था, उठता था। इसके माध्यम से इसको हमने जीव कहा। जीव दिखता नहीं, शरीर दिखता है। शरीर के हिल हलन चलन के आधार से हम इसको जीव कहते हैं, इसको मनुष्य कहते हैं, इसको चींटी कहते हैं, इसको मक्खी कहते हैं, इसको वनस्पति कहते हैं। ये सब शरीर को देख करके उसके अंदर जीव है या नहीं अनुमान लगा करके, हाँ ये जीव है इसको मारो मत, ये कहते हैं। लेकिन वस्तुतः जीव दिखता है क्या? डायरेक्ट जीव को देखो, शरीर को मत देखो। शरीर में जीव है गारंटी है, लेकिन केवल जीव को ही देखो, शरीर को मत देखो। दिखेगा नहीं दिखता, लेकिन जीव है क्या? नहीं है। जीव दिखे बिना जीव अपन ने निर्णय ले लिया किस आधार से शरीर में हलन चलन है, और वह बोल रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, जरा हाथ लगाए तो डर के भाग रहा है, फिर वो रुक भी रहा है। इसके माध्यम से जीव का हम पता लगाते हैं। शरीर जीव को पता लगाने का साधन है, लेकिन केवल जीव ही वो उसको पता नहीं लगा सकते। कई जीव इस संसार में मर रहे हैं, एक साथ मर रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं, कहीं न कहीं शरीर को छोड़ते ही आत्मा निकल जाती है। तो दिखना तो चाहिए, आकाश में कुछ भी नहीं दिखता, जीव जा रहे हैं मर के, लेकिन यहां आकाश में, कमरे में, हॉल में अरबों खरबों जीव हैं, निगोदी जीव जो एक श्वास में 18 बार जन्म ले रहे हैं और 18 बार मरण कर रहे हैं। उनकी आत्मा शरीर को धारण करती है, तुरंत निकल जाती है, शरीर को धारण करती है तुरंत, लेकिन और मरने के पश्चात वह आत्मा अपने उस शरीर को छोड़कर कितनी दूर जाकर के कहां किस शरीर में जन्म लिया ये कह नहीं सकते। पास भी हो सकता है और दूर भी हो सकता है। कोई निगोदी जीव इस हाल में मरा और जहां सिद्ध परमेश्वरी रहते हैं वहां पर उसका जन्म हो गया, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। यहां मरा और सिद्ध भगवान के चरणों में, वहां जाकर के वहां के निगोदी जीव बना, ऐसा भी हो सकता है। पर जाते समय इतना दूर गया, किसी को दिखा क्या? किसी को नहीं दिखा, यहीं से गया है। कई जा रहे हैं यहां से, लेकिन हमारी आंखों के लिए वो जीव दिखते नहीं, और उन जीवों का शरीर भी नहीं दिख रहा है। निगोदी जीव दिख रहे हैं, सूक्ष्म निगोदी जीव किसी के आंख की विषय नहीं, देख ही नहीं सकते, उनको शरीर भी नहीं देख सकते, और उनकी आत्मा तो और सूक्ष्म, इतने बारीक बारीक जीव हैं, गमन करते हैं, इधर उधर आते हैं, जीव को साक्षात देखा नहीं जा सकता। अर्थ मिल गया। क्या बता रहे थे? सूक्ष्म जीव आंखों से नहीं दिखते, जीव नहीं दिखते। जीव जिस शरीर को धारण करता है वह शरीर दो प्रकार का है, दो प्रकार का है। क्या वह दो प्रकार का है? क्या जीव नहीं, शरीर। शरीर दो प्रकार का है, एक कार्मल शरीर और एक धारण किया हुआ यह औदारिक शरीर। दो प्रकार का शरीर होता है, कार्मल शरीर और औदारिक शरीर। सूक्ष्म निबोध जीव के पास औदारिक शरीर भी है और कार्मल शरीर भी है। कार्बन शरीर यानी कार्बन शरीर नहीं, कार्बन 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 नहीं, कार्बन कार्बन शरीर किसको कहते हैं? जो कर्म है वे ही कार्बन। कर्मों को कार्बन शरीर कहा है। ऐसे सूक्ष्म पुद्गलों को, पुद्गल परमाणुओं को हम अनंत की संख्या में ऐसा ग्रहण कर लेते हैं, ग्रहण करके उसको कर्म के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाहर जो सूक्ष्म कर्म होने योग्य जो पुद्गल वस्तु हैं, अचेतन परमाणु के रूप में है, उनको तो कार्मन वर्गना कहते हैं और उन कार्मन वर्गनाओं को खींचता है यह जीव, यह आत्मा खींच लेती। कब? राग द्वेष कषाय करते समय ये आते ही, ये वीतराग अवस्था में नहीं आते। आत्मा वीतराग हो तो कर्म नहीं बंधते। राग द्वेष कषाय करते समय अज्ञान अवस्था में ही वे पुद्गल परमाणुओं को जीव खींचता है, उन पुद्गल परमाणुओं को खींचता है। राग द्वेष नहीं करता है तो नहीं खींचता। अरहंत भगवान राग द्वेष हैं कि वीतरागी? वीतरागी। मुनि महाराज वीतरागी। ये आंशिक वीतरागी हैं, वो पूर्ण वीतरागी। फर्क इतना ही है, इनके भी कर्म आना रुक गया है, ये भी नहीं खींचते, खींचने की ताकत नहीं है, क्योंकि इन्होंने भी कषाय त्याग दिया है। कितने कषाय त्याग दिया है? इन्होंने तीन कषाय त्यागा है, अनंतानुबंधी कषाय त्यागा है, अप्रत्याख्यान कषाय त्यागा है और प्रत्याख्यानावरण कषाय त्यागा है। इनके उदय मुनि को नहीं है, तो जो उदय में नहीं है, मुनि के पास ये नहीं है, तो इनके कारण से जो कर्मों का ग्रहण होना चाहिए था उन कर्मों का ग्रहण होना रुक गया है। इसको कहते हैं संवर, रोकना, संवर। राग भी शादी भाव जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहे हैं, पहले जैसे होते थे अब नहीं हो रहे हैं मुनि बनने के बाद। तो आंशिक वितराग है पर कषाय का पूरी तरह से अभाव नहीं हुआ है। मुनि महाराज के संज्वलन कषाय होता है, संज्वलन कषाय संबंधित कर्मों को, उसके उदय से संबंधित रागादि भावों के कर्मों को तो ग्रहण करता है, किंतु तीन कषाय संबंधित कर्म उसको उनको आते नहीं, इसलिए इनको तो आंशिक वितरागी कहा। और अरहंत भगवान को पूर्ण वितरागी, अनंतानुबंधी को भी जीत लिया, अप्रत्याख्यान को भी जीत लिया है, प्रत्याख्यान को भी जीत लिया है और संज्वलन को भी जीत लिया है, इसलिए जिन कहलाते। जो जीत चुका है चारों को वो जिन, और जो इन्हीं चारों को जीतने में लगे हुए हैं उनको जैन मुनि कहते हैं। तो जीत रहे हैं, कितने जीत चुके हैं, तीन को जीत चुके हैं, और किसको जीत रहे हैं, चौथे संज्वलन को जीत रहे हैं, जीतने में लगे हुए हैं। जीत जो जीत रहा है और कुछ जीत चुका है वो जैन मुनि, और इनके नीचे श्रावक, उन्होंने क्या जीता है, चार में से। हाँ बिल्कुल, किसको जीता है, अनंतानुबंधी कषाय को जीते बिना श्रावक सम्यक दृष्टि हो ही नहीं सकता। और जिसने मिथ्यात्व का त्याग किया है उनकी अनंतानुबंधी नहीं हो सकती, उसने अनंतानुबंधी को जीत लिया है। कैसे जीत लिया, कैसे पता चलता है महाराज ये सब, तो कैसे पता चलता है, आपको पता चलता है लेकिन मालूम ही नहीं कि पता चल गया है। अनंतानुबंधी को आपने सम्यक्त्व धारण करने के बाद अनंतानुबंधी को जीता, ये पता क्यों लगाया, नहीं लगाया आपने, पता लगाती तो पता लग सकता था, लेकिन उधर ध्यान ही नहीं है ना, सम्यक दर्शन हो चुका है, अनंतानुबंधी को आप जीत चुके हैं, इसके बाद भी आपको पता नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। तो पता लगाना चाहो पता लग सकता है, कैसे महाराज, ठीक है, ये की सोचो, अपने मन में विचार करो, मैंने सम्यक दर्शन जो ये धारण कर लिया है, यह सम्यक दर्शन मेरा आत्म कल्याण करे इसलिए धारण किया है, या यह सम्यक दर्शन मुझे भोग वैभव देता रहे, मुझे सुखी रहे, इस उद्देश्य धारण किया है। तो जो आत्म कल्याण के लिए धारण करता है उसके अनंतानुबंधी होती नहीं, और अगर इस उद्देश्य धारण किया है कि भोग वैभव आदि की प्राप्ति, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति मुझे होता रहे इसलिए मैं मिथ्या को छोड़ता हूँ, सम्यक दर्शन धारण करता हूँ, इस उद्देश्य अगर धारण किया है तो अनंतानुबंधी गई नहीं, वो सम्यक दर्शन है ही नहीं, भले ही फिर अनायतन से बच रहे, कुदेव कुगुर कुशास्त्र से बच करके बिल्कुल जिनेन्द्र भगवान और पंच परमिष्ठी के अलावा किसी के पास नहीं जाते, लेकिन इस सम्यक दर्शन के माध्यम से विषय कषायों की उपलब्धि के लिए अगर आपने सम्यक दर्शन धारण किया है, धर्म धारण किया है, तो फिर आपको अभी सम्यक दर्शन हुआ ही कहां, अभी हुआ ही नहीं है, केवल आप अनायतन से बच करके रह रहे हैं इतनी ही बात है, पर कषायों का अभाव हुआ नहीं और सम्यक दृष्टि अभी बने नहीं। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति हम किस उद्देश्य से करें वो उद्देश्य पर डिपेंड करेगा, आत्म कल्याण के लिए करते हैं तो अनंतानुबंधी जाएगी, आत्म कल्याण के लिए अगर नहीं करते हैं तो फिर वो अनंतानुबंधी जाने वाली नहीं है, और फिर भले ही आप सम्यक दर्शन का अर्थ इतना ही समझते थे कि कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास नहीं जाना और यही रहना, यही उपास है, यही पूजक है, तो पूजा करते रहो। मिथ्या तो दशा में भी पूजा करते रह सकते हैं सुदेव सुगुरु सुशास्त्र की, लेकिन असल में क्या गुणस्थान चेंज हुआ है? हैं? बदल गया है? अनंतानुबंधी को जीत लिया है? कषायों को जीतने से गुणस्थान बदलेगा? कषाय को जीतने से ही गुणस्थान बदलेगा। आप चौथे में आना चाहते हैं तो किस कषाय को जीतना पड़ेगा? अनंतानुबंधी को। और अनंतानुबंधी जीतने के लिए क्या संकल्प लेना पड़ेगा? मुझे आत्म कल्याण के लिए ही सम्यक दर्शन धारण करना है और मिथ्यात्व का त्यागना है, यही संकल्प करना पड़ेगा ना। अनंतानुबंधी को जीतना हो तो मुझे आत्म कल्याण के लिए ही सम्यक्त्वी बनना है, सम्यक दृष्टि बनना है, इसी उद्देश्य से करना पड़ेगा ना। तो आत्म कल्याण के उद्देश्य से पंच परमेष्ठियों के शरण में जो आया वो सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र के शरण में आया, इसके लिए चौथा गुणस्थान है, ये गारंटी। और ये पता चलता है कि नहीं आपको कि मैं आत्म कल्याण के लिए सम्यक दृष्टि बना हूं या सम्यक तो धर्म है और इस धर्म से पुण्य मिलता है, पुण्य से वैभव मिलता है, आगे मैं जाकर के वैभव प्राप्त करूं, यही भोग वैभव की चिंता अपेक्षा रख करके अगर किया हो तो वह पता चलता है कि नहीं? वो भी पता चलता है। और आत्म कल्याण के लिए किया हो तो वह भी पता चलता है कि नहीं? पता चलता है। तो अनंतानुबंधी गई है या नहीं गई है ये भी पता चलेगा कि नहीं? कब चलेगा? आत्म कल्याण के लिए हमने अगर धर्म धारण किया है, सम्यक्त्व धारण किया है, तो निश्चित रूप से अनंतानुबंधी चली गई है, ध्यान रखना। और असली सम्यक दृष्टि तो वही जो आत्म कल्याण के लिए धर्म कर रहा है। और जीव जब कुदेव गुरु कुशास्त्र के पास जाता था उस समय देखना, जरा ध्यान से सुनना, इसको बहुत बढ़िया समझा रहा हूं। जब वो कुदेव कुगुरु को शास्त्र के संगति में जाता था क्या उद्देश्य होता था उसका? उसका भी कोई उद्देश्य होता ही है, विदाउट उद्देश्य कोई जीव कोई काम करता नहीं है। क्यों करता था बोलो? वहां आत्म कल्याण करने के लिए जाता था क्या? आत्म कल्याण तो सपने में भी मालूम नहीं उसको, सपने में भी मालूम नहीं आत्म कल्याण क्या कैसा है। अज्ञान अवस्था में जाता था। क्यों जाता था? बस वही था, बस अनादिकाल से हमने किया क्या है? भोग 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 वैभव 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 धन 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 कहते कहे धन धन ओढ़ते रहते। धन 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 मंच न गणोदा मतलब एल नैन पर केल धन 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 ओढ़ोदा इधर मध्या बेटर यही अनादिकाल से किया है, इसी को कहते हैं मिथ्यात्व। केवल धन के पीछे दौड़ना मिथ्यात्व है। और वो धन जहां जो दे वहां दौड़ते थे, मुनि महाराज दें वो भी ठीक, कुदेव दें वो भी ठीक, और कुछ मुनि जो मंत्र तंत्र देने लगे गृहस्थों को, ये क्यों देने लगे? इसलिए तो ऐसे जो धन 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 दौड़ के आ रहे हैं धन 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 कहते हुए, उनकी आशा की पूर्ति के लिए मुनि मंत्र भी देने लगे। तो मुनि विषय देने लगे, इंद्रिय विषय देने लगे, भोग वैभव देने लगे, तो ये मुनि कैसे?
जैसा गिरक मिलता है वैसे मुनि तैयार होते हैं। हाँ, डिमांड ज्यादा वैसे मुनि भी जगह हुए।
आप लोग गिरा के
ऐसे मुनि
आप लोग गिरा के और हम मालिक
ऐसे पाव से जाते हैं।
हम दुकानदार नहीं, उल्टा बता रहे हो आप। हम ही गिराक हो गए, वो दुकान हो गए। देखो पैसा कौन दे रहा है इसमें? मंत्र दे रहा है तो पैसा ही दे रहा है ना। तो पैसा कौन दे रहा है बोलो? तो साधु दे रहा है। साधु ही पैसा दे रहा है। ग्राहक पैसा देता है क्या? दुकानदार पैसा देता है बोलो? ग्राहक देता है। आपको मुझे पैसा दें तो आपको हम ग्राहक कह सकते थे। आप तो मेरे से ही पैसा मांगने आए हैं। मंत्र के माध्यम से पैसा मिले, धन मिले, धन धन दौड़े दौड़ते आए हैं। तो हम तो आपके ग्राहक हो गए, आप दुकानदार बन गए। और हमारे लिए क्या दे दिया? क्या दिया हमारे लिए? क्या दिया आपको? तो मंत्र दिया, धन दिया, हमारे लिए आपने क्या दिया? पीछे का मंत्र भेंट में दिया। तो रिश्वत दे दिया? पिंची गवर्नमेंट रिश्वत है। और ऐसा ही रिश्वत देने के बाद ही मंत्र देने की पद्धति होती तो हर मुनि को समस्या होती जो आत्म कल्याण कर रहे हैं। पीछी कमंडलो देने वो उनके तरफ से पीछी कमंडलो लेने के लिए इनको मंत्र ही देना पड़ता है, देना ही पड़ता है। ऐसा होता तो मुनि तो कोई बन ही नहीं सकता था। छठा गुणस्थान तो किसी का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि पीछी कमंडलो तभी मिलते हैं जब मंत्र दे, और मुनि बनने के बाद मंत्र देना पड़ेगा। तो फिर मुनि बनते क्या हो? वेश धारण करते ठीक है, पीछे का मंत्र ले लेते ठीक है, पर मुनि बन सकते थे क्या? मंत्र एक परिग्रह है और मुनि दीक्षा के बाद मंत्र देना ही नहीं, ये नियम हो जाता है। और मुनि बन गए और पीछे का मंत्र लो आपके माध्यम से आप देना है, तो फिर आप आते ही पहला मंत्र पूछोगे, फिर पीछे का मंत्र लिख रखोगे। अगर ये नियम होता कि मुनि को मंत्र तंत्र देने पर ही पीछे कमंडलो देना, अपने को फुकट में नहीं देना उनको, तो मुनि मुनि ही नहीं बन सकते थे। या तो ऐसा करना पड़ता पहले पीछे कमंडलो का इंतजाम करके स्वयं को कमाओ, पहले से कमाओ और पीछे कमंडलो लेके रखो पहले, फिर सब परिग्रह छोड़ो, पीछे का मुंडू बचाओ। क्या नहीं चल सकता था? ऐसा भी चल सकता था। तो ऐसे तो मुनि बन सकते थे। दूसरे के माध्यम से पीछे का मुंडू का दान लेकर मुनि बनना असंभव होता। कोई भी दे, हम ही अपने घर से ले आते, ग्रस्त अवस्था से पीछे और कमंडलू रखते, पीछे कमंडलू को छोड़कर बाकी सब त्याग। क्या छठा गुणस्थान नहीं होता? अवश्य होता। पीछे कमंडलू परिग्रह नहीं है, ये उपकरण हो गए। चाहे मेरे हो, अपने घर से लाए हो, चाहे दूसरा भी दिया हो, लेना तो पड़ेगा ही, रखना तो पड़ेगा ही, परंतु इसको रख करके इसकी रक्षा में नहीं लगना। इसके माध्यम से किसकी रक्षा करना है? जीवों की रक्षा करना है। उद्देश्य वो है, वो हमारे काया प्रवृत्ति से उठने से बैठने से ना मरे, इस उद्देश्य इसको लिया है। ये पिंची और कमंडलू उपकरण है, शास्त्र भी उपकरण है। इसलिए श्रावक को कहा आप पीछे कमंडलू दें, शास्त्र दें, कुछ भी दें, आहार दें, कुछ भी दें, लेकिन रिश्वत लेकर के नहीं देना। महाराज मैं ये देता हूं, मैं आपका भोजन कराता हूं, मुझे मंत्र दो। मिथ्या दृष्टि श्रावक, महाराज मुझे मंत्र दो तो मैं पीछे कमंडलू देता हूं, मिथ्या दृष्टि को। तो क्या कहा, इनको दान में दो। दान किस लिए, सामने वाले का उपकार हो, महाव्रती मुनि का, उनकी धर्म की रक्षा पीछे से है, अहिंसा धर्म की रक्षा पीछे दे दो, दान में दे दो, उसके बदले में कुछ कामना मत करो, उनके पास कुछ नहीं है। मंत्र की भी कामना मत करो क्योंकि मंत्र भी उन्होंने त्याग दिया है, दीक्षा लेने से पहले भी, पहले ही जैसे घर को छोड़ा उससे वैसे ही उन्होंने मंत्र आदि को भी त्यागा। विद्याएं होती हैं, मंत्र होते हैं, ये साथ नहीं रख सकते। विद्याधरों की श्रेणी में विजयार्क पर्वत में जो विद्याधर लोग मुनि बनते हैं, दिगंबर दीक्षा लेते हैं, इनको भी अपनी सारी विद्या उनको मुनि बनने से पहले त्याग करना पड़ता है, तभी वो छठे गुण स्थान में आते हैं। विद्याओं का त्याग नहीं करते और विद्याओं को रख करके ही मुनि बनते हैं, तो मुनि बने ही नहीं, वेश धारण भले कर लिया पर मुनि हुआ ही नहीं, वो अभी रत्नत्रय जीवन में आया ही नहीं। विद्या भी परिग्रह है, इन विद्याओं को जितने भी उनके पास विद्याएं, किसी के पास 10 हो सकते हैं, किसी के पास 20, 100, 200 विद्याएं, अलग अलग प्रकार की विद्याएं, उन विद्याओं को त्याग करते हैं वो, क्योंकि वो सभी जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, नौकर जैसे रहते हैं वो, विद्या नौकर जैसे काम करते हैं, और उनसे काम लेना मुनि का काम नहीं, वो परिग्रह हैं। तो विद्या रूपी परिग्रह, मंत्र रूपी परिग्रह, दीक्षा लेने से पहले ही त्याग करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के एक सच्चे दिगंबर जैन मुनि, आदर्श मुनि बन सकते हैं। मुनि बनने के बाद भी मालूम नहीं कि मंत्र आदि परिग्रह है क्या नहीं, तो फिर वो अज्ञानी है। कई मुनियों को ऐसा हो सकता है कि नहीं, मुनि तो बन गए और मुनि बनने के बाद भी ये मंत्र परिग्रह है क्या नहीं, यही पता नहीं, ये विद्याएं परिग्रह है क्या नहीं, यही पता नहीं, ऐसे भी मुनि हो सकते कि नहीं, हो सकते हैं भी या नहीं, और वो जो हैं अपने आप को मुनि समझते हैं कि नहीं, समझते, और समझना ये अज्ञान है क्या नहीं, मुनि समझना भी अज्ञान है क्या नहीं, अज्ञान है, अज्ञान जो अज्ञान है उस अज्ञान के कारण से ही वो अपने आप को मुनि समझ रहे हैं, और मंत्र तंत्र होने के बाद भी मुनि समझ रहे हैं, ये अज्ञान ही है, और ये भेद ही मालूम नहीं है, ये ज्ञान ही नहीं है, तो अपने आप को मुनि तो समझेंगे वो। वस्त्र पहन करके ही मैं मुनि हूं ऐसा कोई समझता है तो वो भी अज्ञानी है क्या नहीं, वस्त्र पहनने के बाद भी मैं नमोकार मंत्र में नमो लोए सो सौ नमकित श्रेणी में आता हूं ऐसा कोई समझता है तो ज्ञानी है क्या अज्ञानी। अगर कोई गृहस्थ भी उस वस्त्रधारी को ही नमोकार मंत्र में रहते हैं वो मुनि ही कहलाते हैं और उनके पास रत्नत्रय है ऐसा समझता है गृहस्थ तो वो ज्ञानी है क्या ज्ञानी, वो भी अज्ञानी। नमोकार मंत्र तो वही है चाहे कोई भी पढ़े, किसी भी धर्म में हो, किसी भी संप्रदाय में हो, मंत्र तो वही है ना। पर आप जाप करते समय नमो अरिहंतानम जाप करते समय, नमो आयुर्यानम जाप करते समय सामने कौन आते हैं, किस प्रकार के आते हैं, ये आपके ज्ञान और अज्ञान पर डिपेंड है। आपने ऐसी मान्यता बना ली, यदि ऐसा मान्यता बना ली है कि अरहंत वस्त्रधारी होते हैं, ये मान्यता बना ली और वस्त्रधारी को अरहंत माना, तो सोचो जरा विचार करो, जब आप जाप करोगे, ध्यान में बैठोगे, नमो अरिहंतानम ख्याल में आया, तो किस प्रकार के अरहंत आएंगे, वस्त्रधारी अरहंत आएंगे। और ये किसकी भूल, मानने वाले की भूल। तो मान्यता ही तो मिथ्या तो है, मिथ्या तो और किसका नाम है। झूठ को सच मानना, इसी का नाम मिथ्यात्व। दूध को पेय माना, ठीक है पेय है, पर दूध की परीक्षा नहीं की, दूध का लक्षण नहीं जाना, पी की जरा देखा भी नहीं, एक आंख का पत्ता का दूध है, आंख का पत्ता मालूम है क्या बोलते हैं उसको, आंख का पत्ता। एक ग्लास दूध निकाला रखा वनस्पति दूध, आंख का पत्ता, मनुष्य पीता नहीं कभी, पर दूध उसका नाम है क्या, नहीं, बस दूध ग्लास पर लिखा है दूध, इस ग्लास पर भी लिखा है दूध, ये गाय का दूध है और वो आंख के पत्ते का दूध है, और उसमें पेय कौन सा है ये मालूम नहीं आपको, और दूध पिया जाता है इतना ही मालूम है, पीने योग्य कौन सा है वो लक्षण उनका आपको मालूम नहीं, फर्क मालूम नहीं, लेकिन दूध पीने से स्वास्थ्य स्वस्थ हो जाता है आदमी इतना मालूम है। तो आप किसी भी एक ग्लास को देख करके निर्णय लोगे, मैं जो उसमें विशेष रूप से फैट रहेगा गाढ़ा रहेगा, गाढ़ा रहेगा उसमें उतना ही फैट रहेगा, जो गाढ़ा रहेगा उसका पीऊंगा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं, दूध लिखा हुआ होना चाहिए, जो गाढ़ा होता है वह शरीर के लिए अच्छा है, ताकत देता है, इतना ही लक्षण पता चलाया, लेकिन सही लक्षण पता नहीं चलाया। और जल्दी में आ गए, ग्लास उठा करके पी लिया, कौन सा, आंख के पत्ते का पी लिया, मुंह में डालते ही अरे ये क्या है, दूध को तो दूध 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 कहता था, सभी लोग कहते थे कि दूध स्वास्थ्य का कारण है, और ये तो ऐसा लग रहा है कि ये दूध है ही नहीं, जब पियोगे तब पता चलेगा, या दूर से ही पता चलेगा पीने के बाद। उसी प्रकार दोनों पी करके देखना पड़ेगा, सच्चे अरहंत को भी पी के देखना पड़ेगा और वस्त्रधारी अरहंत को भी पी के देखना पड़ेगा, पी के अनुभव कर लो कल्याण किसमें है। वस्त्रधारी की वंदना कर रहे हैं इसमें शांति मिल रही है, या वस्त्र रहित अरहंत की वंदना कर रहे हैं इसमें शांति मिल रही है, अनुभव से देख लो। महाराज ऐसा भी तो हो सकता है, वस्त्रधारी की ही वंदना करके शांति आ सकती है, मिल सकती है, तो उसमें यदि शांति मिल रही है अज्ञान के कारण से मिल रही है। अज्ञान से भी शांति मिलती है कि नहीं? नहीं मिलती। देखो, किसी को दूसरे को मारते हो गुस्से में, चार चार थप्पड़ देते हो, उसमें आनंद मिलता है या दुख होता है उस समय?
आगे की बात
बाद में भली, उस समय मैं पूछ रहा हूँ, बाद में भली, बाद में ज्ञानी बनते इसलिए दुख होता
है।
मारते समय व्यक्ति ज्ञानी रहता है क्या अज्ञानी? अज्ञानी ही रहता है, पर मारते समय आनंद आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो ये सच्चा आनंद है कि झूठा है?
झूठा आनंद है।
ये झूठा आनंद है। एक आनंद दो प्रकार का, एक झूठा आनंद और एक सच्चा आनंद। आनंद जी दो प्रकार का, एक सच्चा आनंद और एक झूठा आनंद। झूठा आनंद असली आनंद नहीं है, पर उस आनंद का पश्चाताप कब होता है? जब ज्ञानी बनते आप। वस्त्रधारी अरहंत को नमन करो, आनंद आएगा। भक्ति करो, भक्ति में डूब जाओगे, मस्त तो हो जाओगे। पर जब आपको सच्चे अरहंत का स्वरूप पता लगेगा, उस समय आपको आनंद आएगा। क्या जो किया हुआ कृत्य था, उस पर पश्चाताप, दुख होता है कि नहीं? जो आनंद आया था उसी पर आप दुख व्यक्त कर रहे हैं, ज्ञान होने पर। ये होता है। वस्त्रधारी अरहंत को स्मरण करोगे तो आनंद तो आएगा, लेकिन अज्ञान अवस्था में आएगा। और ज्ञान अवस्था आने के उपरांत आपका मन नहीं कहेगा कि अरहंत को, वस्त्रधारी अरहंत को नमन करो। हजार बार आप आपको झुकाओ, जो कोई झुका भी दें वो ध्यान में नहीं आएंगे। उनके मन में तो दिगंबर, वीतरागी, निर्दोष, निर्मल, गुण संपन्न अरहंत भगवान ही आएंगे। ये ज्ञानी है। जो गुण और दोष को समझता है वो ज्ञानी है, और जो गुण और दोष का विचार ही नहीं करता और चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, वो अज्ञानी। अज्ञानी पंख के मार्ग से चलता है, और ज्ञानी धर्म के मार्ग से चलता है। पंथ अलग वस्तु है, धर्म अलग वस्तु। वस्त्रधारी गुरु हो जाए, वस्त्रधारी भगवान बन जाए, तो फिर आप गुरु और भगवान क्यों नहीं, प्रश्न उठेगा। क्या डिफरेंस है? परिग्रह तो आप भी हैं, दोष आप में भी हैं, पाप आप में भी दिख रहे हैं और भगवान में भी दिख रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भक्त एंड भगवान? यही तो विचार कर, ज्ञानी ऐसा विचार करता है, लेकिन पंथवादी ये विचार नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अज्ञान उसके लिए कारण है। जब तक अज्ञान नहीं जाता तब तक ज्ञान नहीं आता, और जब तक ज्ञान नहीं आता तब तक कल्याण नहीं होता। ज्ञानी कल्याण करता है, अज्ञानी अकल्याण करता 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 जाता है, और जिस दिन पश्चाताप हो जाए लौटता है, अब उस दिन ज्ञानी बनता है। जिस दिन ज्ञानी बनता है कल्याण कर लेता है, धर्म उसी दिन उपलब्ध होता है। जब पास में धर्म आता है उस दिन हम धर्मात्मा बनते हैं, और वह व्यक्ति किसी गुरु के माध्यम से तो ज्ञानी बनता है, किसी सच्चे शास्त्र के कारण से तो ज्ञानी बनता है, किसी प्रभु के भगवान के समूह चरण में जाकर के उपदेश सुनने से ही ज्ञानी बनता है। तब तक तो अंधकार ही रहता है ना। ये एक अंधकार अनादिकाल से है दुनिया में, ज्ञानी भी रहते हैं अज्ञानी भी रहते हैं, ये अपना कल्याण करते रहते हैं और वो अपना अकल्याण करते रहते हैं। जब उसको गुरु का ज्ञानी का निमित्त मिलता है तो पलट जाता है, उसके जीवन में प्रकाश फैल जाता है। जब जीवन में प्रकाश फैलता है तब कल्याण प्रारंभ होता है। और फिर उस ज्ञानी व्यक्ति को हजार कोशिश करो आप कि ज्ञानी नहीं बनना, ज्ञानी नहीं बनना और वस्त्र रहित अरहंत को नहीं मानना। हजार बार कहो मानेगा क्या उसका मन, जिसको वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया, दूध का दूध पानी का पानी पता चल गया, तो पानी पर विश्वास करेगा क्या? वो दूध को दूध समझ लेता है, दूध पर ही विश्वास करेगा। मन तो ऐसा ही बन जाता है, मानसिकता बन जाती है, ये कल्याण का मार्ग है। मानसिकता बन गई, कल्याण आ गया। दुनिया में अज्ञानी ज्यादा है, ज्ञानी ही कम है। वो समझते ही नहीं हमारे में और हमारे उपास में क्या अंतर है। वो भी वस्त्रधारी और हम भी वस्त्रधारी, फिर भी उस वस्त्रधारी धारी में ही एक उपास बन गया और एक उपासक बन गया। क्या अंतर है इस दोनों में?
कुछ नहीं।
यद्यपि आप पूछो, सही पूछो, तो दोनों उपासक की कोटि में है। अज्ञानी भले ही हो, दोनों अज्ञानी हो, पर उपासक तो है। जब तक अपने पास कषाय है, परिग्रह है, वीतरागता नहीं है, तब तक हम उपासक की कोटि में आते हैं क्या? उपास की कोटि में, उपासक की कोटि में, भक्त की कोटि में क्या? भगवान की कोटि में, भक्त की कोटि में कि गुरु की कोटि में? भक्त की कोटि में आते। गुरु वही जिसके पास वितरणता हो, भगवान वही जिसके पास वितरणता हो, जो विजयी हो। इसलिए दोनों दिगंबर है, गुरु भी दिगंबर और भगवान भी दिगंबर, दोनों दिगंबर है। वो दिगंबर क्यों है? क्योंकि इनके पास राग नहीं है इसलिए दिगंबर दिख रहे हैं, कषाय नहीं है इसलिए दिगंबर दिख रहे हैं। मूलतः सोचो तो कषाय न होने के कारण से ये बाहर से दिगंबर है। बाहर दिगंबर क्यों होना पड़ा? क्योंकि कषाय नहीं है इसलिए होना पड़ा। सही अर्थ तो ये है, लेकिन एक दूसरा अर्थ भी ये है। कषाय छोड़ने के लिए बाहर के वस्त्र अपने आप गिर जाते हैं। छोड़ने का उद्देश्य हो, छोड़ चुके हो, तो वस्त्रों को छोड़ना नहीं पड़ता, वस्त्र उठाएगा नहीं, वस्त्र को कौन उठाएगा? वस्त्र के प्रति राग नहीं है, वस्त्र को क्यों कौन उठाएगा? राग हो तो ही उठाना होता है, राग न हो तो उठाएंगे नहीं। छोटी सोती छाप छोड़ दिया था, एक वस्त्र ही तो बच गया था, बस हाथी पार हो गया था और उसकी पूंछ अटक गई थी। और कोई बड़ी बात थी क्या पूंछ को खींच करके निकालना? हाथी पूरा पार हो गया दरवाजे से और कहीं पूंछ उसकी अटक गई। वस्त्र को छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, घर छोड़ा, संपत्ति छोड़ी, धन छोड़ा, मंत्र तंत्र छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब तिलांजलि देकर के आए परिग्रह संपत्ति को, त्यागी बन गए और वस्त्र छोड़ने के लिए सोच रहे हैं कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू कैसे छोड़ू, नहीं होता नहीं होता, कैसे नहीं होता। तुमने हाथी को पार करा दिया, हाथी पार कर गया उसके पूंछ पर तो अटक गई है, एक झटके दे दो तो वो भी छूट जाएगा, गुरु की कोठी में आ जाओगे। वस्त्रधारी गुरु होता है क्या? गुरु का लक्षण वीतराग है क्या? रागी वीतरागी। वस्त्रधारी गुरु नहीं होते, वस्त्रधारी भगवान नहीं कहे जाते। भगवान का लक्षण अलग है, गुरु का लक्षण अलग है, और वस्त्रधारी भगवान का लक्षण अलग है, वस्त्रधारी गुरु का लक्षण अलग है। वस्त्रधारी गुरु, गुरु यदि कहते हो तो फिर आप गुरु क्यों नहीं है? जो सामान्य व्यक्ति है, जो भक्त है, वो भक्त समझ रहा है कि वस्त्रधारी ही हमारे गुरु, ठीक है, मान ले, क्षण मान ले, वो भी वस्त्रधारी, आप भी वस्त्रधारी, उनको आप गुरु हो क्या? नहीं तो हम गुरु नहीं है, हम गुरु नहीं, क्योंकि वो गुरु हैं, हम शिष्य हैं। लो, गुरु शिष्य का नाता जोड़ दिया, शिष्य ने अपने अज्ञानवश अपने जैसे ही रहने वाले को गुरु बना दिया। कुछ विशेषता तो होना,
चालाकी
थी उसकी, चालाकी
उसकी,
चालाकी। आप उन दोनों को चैप्टर बता रहे हैं, हम उसी चैप्टर को समझा रहे हैं। चैप्टर क्या चल रहा है?
चालाकी
करते हैं। अज्ञानी बड़ा चैप्टर, परिग्रहधारी बड़ा चैप्टर। चैप्टर क्यों? क्योंकि वीतरागता का यह चैप्टर मालूम नहीं है, इसलिए ये दोनों चैप्टर बन, मतलब परिग्रह बचाना चाह रहे हैं, ये अपनी कमजोरी है। ये कमजोरी जो है ये हमको चैप्टर बनाता है, उस चैप्टर से बचाता है। वीतराग ज्ञान मार्ग, उस चैप्टर से बचा करके हमको ही चैप्टर बना देता है, हमारी कमजोरी हमको चैप्टर बना देती है। होता है ऐसे अज्ञान अवस्था। दुनिया में मनुष्यों की कमी नहीं, दुनिया में कमी है ज्ञान की, दुनिया में कमी है समझ की, दुनिया में कमी है विचार की, विचारक होने की कमी है। विचारक बनते ही हमारा रास्ता बदल जाएगा, हमारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण के पथ पर चलते हुए आपको पांच की उपासना करने के लिए कहा है, जो बिल्कुल घृतवत शुद्ध है। घृत यानी घी, घृतवत शुद्ध है। पांच परमेष्ठी घृतवत वीतराग है, इनकी उपासना में लगो, उनकी उपासना में किस लिए लगो? क्या पंतवादी बनने के लिए? दिगंबरों का भी तो पंक्ति तो है, ये पंत है क्या पथ है? सोचो तो, मोक्ष मार्ग है, कल्याण का मार्ग। जो मार्ग होता है, जो पथ होता है, पथ को पंथ मत कहो, पथ को पंथ मत कहो, उसके ऊपर एक बिंदी रखते हो तो तुम्हारा दोष है। उसमें था नहीं, उसमें था नहीं बिंदी, पथ था, कल्याण का मार्ग था, उधर हमें जाना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कहा कि वो पथ भी पंथ है। तो पंथ है तो गलती किसकी? हमारी गलती है। पथ कभी पंथ नहीं बन सकता और पंथ कभी पथ होता नहीं, उसमें तो पहले से ही बिंदी रहती है, प बिंदी ठ पंथ। पथ में बिंदी होती ही नहीं और अज्ञानी उसको बिंदी रख देता है, तो क्या पथ पंथ बन जाएगा? हमारी बिंदी रखने मात्र से, पथ को पंथ करने मात्र से क्या पंथ बन जाएगा? वो नहीं, आपके थोपने से कुछ नहीं होता। ज्ञानी को अज्ञानी कहने से, उनके कहने के कारण ये अज्ञानी बना है। अगर दुनिया में कभी ऐसा होता है? नहीं होता। किसी अज्ञानी को किसी व्यक्ति ने अज्ञानी कहा, ज्ञानी कहा, अज्ञानी है ज्ञानी कहा, तो अज्ञानी उनके कहने से ज्ञानी होता है? ऊपर से आरोप से कुछ परिवर्तन नहीं आता, ऊपर से नाम रखने पर कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। ज्ञानी अज्ञानी बनना तो अपने पुरुषार्थ की बात है। सच्चाई को समझकर हम सच हो गए तो हम सच ही हैं, झूठ हजार लोग कहें हमारी सच्चाई मिट नहीं सकती। क्या मिट सकती? एक व्यक्ति होशियार बन गया, उसको पागल 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 सारे लोग पागल कह रहे हैं, तो पागल बन जाएगा क्या? बन सकता है। अगर वो उसको अंदर लेगा तो वास्तव में पागल बन जाएगा। मैं वास्तव में पागल हूं क्या? हूं क्या? हूं क्या? तो पागल हूं तो अस्पताल चलो, मुझे ले चलो, मेरी भी इलाज करो। उसका असर लेगा ना तो पागल बन सकता है, असर लेगा ही नहीं, उसको स्वीकार ही नहीं करेगा तो पागल बनेगा ही नहीं। चाहे सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो अकेला बच जाए, ज्ञानी अज्ञानी नहीं बन सकता, होशियार व्यक्ति पागल नहीं बन सकता। पथ को स्वीकार करने के लिए बहुमत नहीं देखना चाहिए कभी भी। जरूरी है क्या? बहुमत को देखना, देखने की प्रतीक्षा करते रहोगे तो जिंदगी तो जा रही है बिना पथ के, कल्याण रुका हुआ है, कल्याण रुका हुआ है, बिना पथ के जिंदगी जा रही है। ये जिंदगी बहुमत नहीं बन पाया और ऐसी जिंदगी पूरी खत्म हो गई तो मिला क्या? पथ का ज्ञान होते होते ही पथ पर चलना चाहिए, यही बुद्धिमानी है। अन्यथा देखेंगे समाज पूरी जब तैयार होगी तब हम सच्चाई पर चलेंगे। वो चल रहे हैं कि नहीं, उतनी चल रहे हैं कि नहीं, इतने ही सच्चाई पर चलने वाली इतने ही, तो कम संख्या को आप समझो कि अधर्म है, झूठ है। पथ को समझो कि वो पथ है भी तो झूठ है कहोगे। तो पथ का निर्णय बहुमत से होता है क्या? पथ का निर्णय परीक्षा से निर्णय होता है, परीक्षा से। अब जिस दिन आपको कन्फर्म हो गया ये पथ है, जिस दिन कन्फर्म हो गया उसी दिन आपको ये चाहिए कि उस दिन खड़े हो जाओ उस पर। कल्याण तो आपका होना ही है, दूसरे से क्या लेन देन? खुद का देखो पहले, खुद को दुख से मुक्त करो, खुद को संसार से मुक्त करो, खुद को चिंता से मुक्त करो। लोगों को पथ पर चल रहे हैं क्या नहीं चल रहे हैं, ज्ञानी है क्या अज्ञानी, इसका चिंता मत करो। आपको ज्ञान हो गया है, मिल गया है ज्ञान, बस आप चलो। कल्याणवशी वक्त प्रारंभ। अन्यथा संख्या को देखते देखते रहोगे तो जीवन खराब हो जाएगा। किसी संख्या को कौन है किसका इस संसार में? कोई किसी का है? हमारे दुख को कोई ले सकता है? बंटवारा हो सकता है दुख का? हमारे सुख का बंटवारा किसी हम कर सकते हैं? सब अपने अपने अधीन, हम स्वतंत्र हैं। फिर बहुमत क्यों देख रहे हो? पथ पर चलने के लिए सब कुछ त्यागो, त्यागने का साहस करो। किसी से हमें कोई मतलब नहीं है। धर्म क्या है हमें समझना है, समझने के पश्चात उसी दिन उसे स्वीकार करना है। जब तक समझ में नहीं आता तब तक तो ठीक है, प्रतीक्षा करो। अभी समझ में नहीं आया, अभी थोड़ा सा जमलिंग है, ऐसी परिस्थिति है, तो तब तक तो प्रतीक्षा करो। आपको निर्णय हो गया है, निर्णय सत्य तो यही है, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि इस पर और कितने लोग चलना चाहते हैं। मूर्ख दूसरा चले या न चले, उससे क्या लेन देन तुझे? खुद कल्याण कर ले पहले। खुद का कल्याण तो हुआ नहीं, दुनिया को देखता बैठा है। खुद को खुद तो भूखा है और दुनिया में ये देख रहा है कि कितने लोग भोजन कर रहे हैं। मूर्खता है ये। संख्या को देखना, बहुमत को देखना, ये निरी मूर्खता है। धर्मात्मा का लक्षण ये नहीं। धर्मात्मा वही जो धर्म को समझ चुका, ज्ञानी बन चुका। आज इतना ही पर्याप्त। चिन्मानी
प्रभु देव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी जग जन मन के मल को धोती अतः कहाती चिन्मानी जयवंतो मां जग में तब तक जब तक सूरज चांद रहे शीश नवा।